आप सबका यहाँ पर श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अनुष्ठान में स्वागत है। ये अनुष्ठान महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भगवान का जन्म दिवस है। साधारण जन्म दिवस के ऊपर भी लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, बड़े धूमधाम से अपने जन्मदिवस को मनाते हैं। तो अगर हम अपने जन्मदिवस को इतने धूमधाम से मनाएंगे तो भगवान के जन्मदिवस को क्यों ना और भी धूमधाम से मनाया जाए। बल्कि भगवान के जन्मदिवस को मनाने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शास्त्र में बताया है कि ऐसे अनुष्ठानों को, उत्सवों को मनाने से हमारी भक्ति विकसित होती है। माधव तीति भक्ति जननी, माधव मतलब श्री कृष्ण, लक्ष्मी के पति। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके अनेक अवतारों के उत्सव जब हम मनाते हैं तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, हम ज्यादा यहां पर भोग करेंगे और यही हमारे जीवन की सफलता है। लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है उनके प्रति भक्ति की भावना को जागृत करना। श्री कृष्ण परम सत्य है, भगवद गीता में भी ये घोषणा करते हैं। कितने सारे धर्मों के ग्रंथ हैं सारे दुनिया भर में, लेकिन भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि मैं भगवान हूं। अन्य ग्रंथों में कोई एक मसीहा है, कोई साधु है, कोई भक्त है, वो कहता है कि भक्त और भगवान वो हैं। लेकिन यहां पर भगवद गीता में हम देखते हैं कि ये तो गीत गाया हुआ है स्वयं भगवान ने, स्वतः भगवान की वाणी है ये। और भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। मत तर पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ऊंचा कोई सत्य यहां पर नहीं है, मैं सबसे परम सत्य हूं। बारंबार गीता के हर एक अध्याय में, हर एक पन्ने में हमें यही पढ़ने में आता है, श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। कई बार लोग पूछते हैं, आप लोग केवल कृष्ण 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 क्यों बोलते हैं, आप कोई और भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? आपके भगवान कृष्ण हो सकते हैं लेकिन हमारे भगवान गणपति हैं, हमारे भगवान दुर्गा हैं, हमारे भगवान ब्रह्मा जी हैं, हमारे भगवान शिव जी हैं। तो ऐसे लोगों की धारणा है, परंतु ये जानना जरूरी है कि हम केवल कृष्ण कृष्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने ऐसे बताया है इसलिए बोलते हैं। अगर हमें गणित का ज्ञान चाहिए तो हम किसी कपड़े के दुकान में नहीं जा सकते सीखने के लिए, बराबर है, किसी गणित के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। हमको अगर कपड़ा खरीदना है तो गणित के अध्यापक के पास जाके बोले कपड़ा चाहिए तो कोई फायदा नहीं। उसी तरह से अगर हमें भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। तो हम पूछेंगे कि भगवान के पास जाएं कैसे? उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, उनकी जो वाणी है, उसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको जानना है कि सरकार क्या बोल रही है, सरकार ने यहां पर देश को चलाने के लिए क्या कानून बनाए हैं, आपको क्या करना होगा? उनके ग्रंथों को पढ़ना होगा। सरकार ने जो कायदा कानून निकाला है उन ग्रंथों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि ये देश कौन से कानूनों के आधार पर चलता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ये देश का एक सरकार है और वो देश की सरकार कानून बनाती है जिससे कि इस देश के नागरिक जिनका पालन करते हैं, ठीक उसी तरह से ये ब्रह्मांड के भी एक कोई सृष्टि करता है, उन्होंने भी कुछ कायदा कानून बनाया है इस सृष्टि के लिए। और हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उस कानून का पालन करे। लेकिन व्यक्ति कानून का पालन तब कर सकता है जब उसको जानकारी हो कि कानून क्या है। अब कानून क्या है वो नहीं मालूम तो कैसे पालन करेगा। अगर इस देश का नागरिक है लेकिन उसको पता नहीं कि रास्ते में लाल बत्ती दिखाई जाए तो गाड़ी रोकना चाहिए, तो उसको दंड मिल जाएगा। वो कह नहीं सकता न्यायाधीश के सामने कि मुझे मालूम नहीं था कि लाल बत्ती मतलब रोकना, मैंने सोचा कि लाल बत्ती मतलब आगे चलना। तो न्यायाधीश बोलेंगे तुम इस देश में रहते हो, गाड़ी चलाते हो, तो तुम सीख लो पहले कानून क्या है। तो उसी तरह से हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में भगवान के कायदे कानून का पालन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। मृत्यु के बाद हमें जाना पड़ेगा न्यायाधीश के पास। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए यमराज न्यायाधीश बनते हैं हमारे लिए। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत यमदूत हमारी आत्मा को शरीर से खींचने के लिए आते हैं, शरीर को खींच के ले जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको रहना है, हमको बहुत कुछ काम करना है और पैसे कमाना है और भोग करना है, हमारे कितने जिम्मेदारियां हैं, अभी समाप्त नहीं हुई हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है, मुझे आप मत ले जाओ। लेकिन यमदूत नहीं सुनने वाले, जब हमारा समय आएगा हमको खींचकर ले जाएंगे उनके स्वामी यमराज के पास। फिर यमराज के जो सहायक होते हैं चित्रगुप्त, उनके खाते में सब लिखा होता है। अच्छा अभी किसको लाए हो भाई, हाँ ठीक है, इसने कौन से पाप किए कौन से पुण्य किए सब उनके खाते में लिखा हुआ होता है। और फिर हमारे पाप और पुण्यों के हिसाब से हमें उपयुक्त कोई एक कर्मों का फल मिलता है। पाप किए हैं तो हमें दंड मिलेगा, अगर हमने पुण्य किए हैं तो कोई बख्शीश मिलेगा। अगर हम यमराज के पास कहें कि देखिए यमराज जी, हमको मालूम नहीं था कि खून करना झूठ बोलना ये पाप है, ये बुरा काम है, इसका दंड मिलने वाला है, हमको नहीं मालूम था, तो यमराज नहीं सुनने वाले। वो कहेंगे कि तुमको जब मनुष्य जीवन मिला था तुमने पता क्यों नहीं किया कि मनुष्य जीवन के लिए कायदा कानून क्या है। मनुष्य जीवन का पूरा फायदा उठाया तुमने, मनुष्य जीवन में सारा भोग कर लिया, मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि का भोग किया तुमने, उसमें कोई टैक्स नहीं भरा, कोई कर नहीं भरा। जो भगवान ने हवा दी है, पानी दी है, रोशनी दी है, उष्णता दी है, जो प्रकृति में निसर्ग में सब उन्होंने फल फूल अनाज दिए हैं, उन सब का भोग किया तुमने, लेकिन मेरे प्रभु भगवान को कोई कर नहीं दिया, तुमने टैक्स नहीं भरा, इसलिए तुमको दंड मिलेगा ही। इसका मतलब है कि हर कार्य के लिए हम जिम्मेदार होते हैं और हमको जानना चाहिए कि कौन से कार्य हमें करने चाहिए कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये भगवद गीता है क्या? ये भगवद गीता मनुष्य जीवन के लिए एक कायदे का कानून का ग्रंथ है, लॉ बुक। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की ओर से वकालत करते हैं कि देखो ऐसे कानून का पालन करो, ये भगवान का कानून है, और अगर इस कानून का पालन नहीं करोगे ये पाप है, ये पाप का फल ये होगा। तो इस कायदे के ग्रंथ में भगवद गीता में कायदे बनाने वाले ने ही स्वतः बता दिया है कि मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही भगवान हूं, ये श्री कृष्ण कहते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई भिन्न मत होने की बात नहीं है। स्पष्ट रूप से जगह जगह में, हर अध्याय में, प्राय हर पन्ने में ये दिखाई पड़ता है। बल्कि इस ग्रंथ का नाम भी है भगवत गीता। भगवत मतलब जो भगवान से संबंधित है, जो भगवान ने बोला हुआ है वो गीत है, ये कोई साधारण गीत नहीं है। और क्योंकि भगवान ने ये गीत गाया हुआ है, इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा। बहुत मधुर संगीत है ये, क्योंकि इसमें हमें वो ज्ञान मिलता है जिसे हमेशा के लिए हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। कौन नहीं चाहता है दुख से मुक्त होने के लिए? इतने लोग भगवान के सामने आते हैं हाथ जोड़कर, सभी लोग कहते हैं भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरी ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान के पास आकर कहता है भगवान बहुत दिन हो गए मैं दुखी नहीं हुआ, थोड़ा दुख मेरे जीवन में दे दो, इतना सुख मुझे मत दो। ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो अगर हमें दुखों से मुक्त होना है तो हमको जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है। तो हम लोग श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं कि इस मनुष्य जीवन के कायदे के ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की हुई है। अर्जुन भी घोषणा करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीषि मे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप ही पर ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही पूर्ण पवित्र हैं, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, आदि देव हैं आप, सबसे सब कुछ आपसे ही आता है। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, हे कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि जो आज तक इतिहास में हुए हैं उन सभी ने घोषणा की है कि आप ही भगवान हैं। कौन से ऋषियों ने कहा है? असित, देवल, व्यास, नारद इत्यादि। तो ऐसे महान महान ऋषियों का नाम लेते हैं अर्जुन और कहते हैं कि इन सब बड़े बड़े ऋषियों ने ये घोषणा की है कि आप ही भगवान हैं श्री कृष्ण। मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन मैं तो आपका मित्र हूं। हो सकता है लोग कल मेरे ऊपर आरोप उठाएं कि भाई तुम तो भगवान, तुम तो कृष्ण के मित्र हो, इसलिए तुम कहते हो कि कृष्ण भगवान है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत हुए वो भी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं। स्वयं च एव ब्रवीषि मे, और स्वयं आप भी इस बात की घोषणा अब कर रहे हैं। तो अगर ये प्रश्न आपसे अगर कोई कहे कि आप श्री कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर है क्योंकि भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने और अन्य सारे ऋषि मुनियों ने, अर्जुन ने, बड़े बड़े भक्तों ने, सब ने घोषणा की है कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए हम इसको मानते हैं। हम हमारा खुद का कानून नहीं बना सकते, जो भगवान कानून बनाते हैं वही कानून है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म मतलब भगवान की वाणी। अगर यहां मनुष्य समाज में लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं भगवान के बारे में, स्पष्ट ज्ञान अगर लोगों को नहीं है, अगर कोई भ्रांतियां हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। ऊपर के लोगों के ऋषि मुनि गणों भी कभी कभी ऐसे भिन्न मत होता है, ऐसे भ्रांतियां होती हैं। बहुत 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 साल पहले की बात है, बहुत सारे ऋषि मुनिगण ऊपर के लोकों में एकत्र हुए थे और उनमें कोई धर्म कथा चल रही थी। धर्म कथा करते करते ये प्रश्न उठा कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है। किसी ने कहा शिवजी भगवान है, किसी दूसरे मुनि ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी महान है, वही भगवान है। किसी ने कहा नहीं विष्णु भगवान है, किसी ने कहा नहीं नहीं देवराज इंद्र महान होंगे। आखिर चर्चा करके उन्होंने कहा नहीं, इन तीनों में से तो कोई एक भगवान है, या तो ब्रह्मा, शिवजी या विष्णु, तो इनमें से कौन हो सकते हैं। ऐसे बातचीत चलती रही, फिर उन्होंने भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनको चुना कि आप जाके निश्चय कर लो, आप तीनों के पास चले जाओ और निश्चय करके हमें बताओ कि इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मा जी करते हैं, बहुत ऊंची बुद्धि है उनकी, इस ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं वो। शिव जी इस ब्रह्मांड का विनाश करते हैं, अपने डमरू बजाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, और जब सृष्टि के संहार का समय आता है तो सब विनाश कर डालते हैं अपने तांडव नृत्य से। और विष्णु वो तो इस सृष्टि का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी विनाश करते हैं। तो इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न निर्माण हुआ। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, जो कि इस ब्रह्मांड के ऊपर सबसे ऊंचा लोक है। वहां जाने के बाद वो ब्रह्मा जी के सामने जब आए तो जानबूझकर भृगु मुनि उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वैसे ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता हैं, और पिता के सामने लड़के को थोड़ा झुकना चाहिए, थोड़ा सम्मान देना चाहिए पिता को। भृगु ऋषि ने जानबूझकर ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं दिया, सीधे चले आए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरा बेटा है, वो भी इतना बड़ा ऋषि है, फिर भी पिताजी को, महान व्यक्तियों को कैसे सम्मान देना इसे नहीं मालूम। उनको बहुत गुस्सा आया, अंदर से गुस्सा आया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है। तो अपने बुद्धि के बल पर उन्होंने अपने मन को वश में कर दिया, अपने क्रोध को वश में किया, लेकिन फिर भी उनके आंखों से पता चल गया कि वो बहुत कुपित हो गए हैं, बहुत क्रोध आ गया उनको। तो भृगु ऋषि समझ गए ये भगवान नहीं हो सकते। तो भृगु ऋषि आराम से वहां से निकल गए। फिर सोचा चलो अब शिवजी के पास जाते हैं कैलाश। तो कैलाश में गए। अब शिवजी ये भृगु ऋषि के भाई तुल्य लगते हैं, क्योंकि शिवजी भी ब्रह्मा जी के आंखों के बीच से, ध्रुवों के बीच में से प्रकट हुए थे, तो उस दृष्टि से वो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं। तो जब शिवजी के पास आए भृगु ऋषि, शिवजी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मेरे भाई कितने दिनों के बाद मेरे पास आया है, बहुत दिन हो गए, चलो आलिंगन करें मेरे भाई को। तो भाई को आलिंगन करने के लिए गए तो भृगु मुनि तो परीक्षा लेने आए थे। तो भृगु मुनि कहने लगे, अरे छी 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 छी, दूर रहो हमसे, देखो कितना अशुद्ध है आपका शरीर, सब जगह श्मशान का रज जो है वो सब शरीर में लगा हुआ है, मैं तो शुद्ध हूं, स्पर्श करके आपको मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। शिव जी को आया बड़ा गुस्सा। अब पहले जब ब्रह्मा जी के पास भृगु मुनि गए थे, अपने मन से उन्होंने अपराध किया था ब्रह्मा जी के प्रति। अब जब शिवजी के सामने आए तो भृगु ऋषि ने अपने वाणी से, अपने शब्दों से शिवजी का अपमान किया। ये ज्यादा बड़ा अपराध है, मन में किसी का अपराध करें और फिर अपने वचन से, अपने वाणी से किसी का अपराध करें, इसमें फर्क है। हम बोल के जब किसी का अपमान करते हैं तो वो ज्यादा गंभीर माना जाता है। तो भृगु ऋषि ने बोलकर शिवजी का अपमान किया और शिवजी बड़े गुस्से हो गए, अपना त्रिशूल उठाया और सीधे भृगु मुनि की ओर, उनको आक्रमणात्मक भावना से आगे बढ़े। उस समय पार्वती देवी शिवजी के पैरों में, चरणों में पड़े कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये उचित नहीं है, भृगु ऋषि आपके भाई हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है, आपको शोभा नहीं देता, कृपया क्षमा कर दीजिए उसे, आप धीर हैं। तो फिर शिवजी संभल गए। तो फिर भृगु मुनि सोचने लगे, नहीं ये भी भगवान नहीं। फिर रह गए विष्णु, ब्रह्मलोक से, कैलाश से अब जाना था विष्णु लोक, श्वेत द्वीप नाम के लोक में, जहां दूध का सागर है, क्षीर सागर, वहां पर विष्णु निवास करते हैं। तो विष्णु वहां पर अनंत शेष में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी देवी उनके वक्ष स्थल में थी, वो विष्णु जी की सेवा कर रही थी। और जैसे ही वहां भृगुमुनि आए, उन्होंने सोचा अब इनकी तो और कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी का अपमान मैंने मन में किया, शिव जी का अपमान मैंने मेरे वाणी से किया, अब इससे भी अधिक गंभीर अपराध मुझे करना चाहिए विष्णु के प्रति, और ये अपराध मुझे मेरे शरीर से करना चाहिए उनके शरीर के ऊपर। तो फिर भृगु ऋषि ने क्या किया, सीधे गए विष्णु के पास और जोर से उनके वक्ष स्थल में उन्होंने लात मार दिया। लक्ष्मी देवी तो हैरान हो गई, लेकिन विष्णु जल्दी से उठे, जल्दी से उठकर भृगु ऋषि के पास आए और उनको पूरा प्रणाम किया, उनके चरणों तक झुके और कहने लगे, अरे महान ऋषि आप यहां आ गए, कितना दुर्भाग्य है कि मैं आपका अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर पाया। आप लोग, आप ऋषि मुनि लोग इतने महान हो कि तीर्थ स्थानों को आप पवित्र करते हो, इसलिए कृपया यहां मेरे वैकुंठ लोक में निवास कीजिए और इस धाम को पवित्र कीजिए। और वैसे आपके जो चरण कमल हैं बहुत कोमल है और मेरा वक्षस्थल जो है बहुत कठोर है, हो सकता है कि आपके चरण कमलों में चोट पहुंची हो। तो फिर विष्णु ने भृगु ऋषि के चरणों को दबाना, मालिश करना शुरू किया और उस समय भृगु ऋषि इतने भावभोर हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए। वो सोचने लगे कि मैंने इतना बुरा व्यवहार किया विष्णु के प्रति, लेकिन गुस्सा होने के बजाय इनका व्यवहार तो देखो, ये पूरी तरह से सतुगुणी है, इनका मन पूरी तरह से इनके वश में है, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। विष्णु भगवान तो यही भगवान है। फिर वापस जाकर भृगु मुनि ने सारे ऋषि मुनियों को खबर दी कि मैं यात्रा में गया ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ, और तीनों जगह जाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विष्णु ही भगवान है। तो इस तरह से शास्त्रों में और लोक परंपरा से भी ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रमाण मिलता है कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। लोग अज्ञान की वजह से अनेक देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। भारतवर्ष में भगवानों की कमी नहीं है, नए भगवान हो जाते हैं, इतने भगवान, ऐसे लोग बोलते हैं मेरे इष्ट देव ये हैं, इनका नाम भी कभी सुना नहीं होता है हमें। वो बोलते हैं ये फलाना फलाना देवी हैं, ये फलाना फलाना देव हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। तो इस तरह से भारत में लोग देवी देवता और भगवान इनके बीच में वो ठीक तरह से भेद नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि देवताओं में और मुझ में बहुत अंतर है। हे अर्जुन, जो लोग देवताओं की उपासना करेंगे वो देवताओं के पास चले जाएंगे, जो मेरी उपासना करेंगे वो मेरे पास चले आएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पुत्री यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं मृत्यु के बाद, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, भूत प्रेतों के लिए हमेशा भोग रखते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनके उनके लिए भूत प्रेतों के लिए मंदिर भी होते हैं। तो ये लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उनका अगला जन्म भूत प्रेत समाज में हो जाएगा, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास चले जाएंगे। और कृष्ण कहते हैं यान्ति मद याजिनोऽपि माम, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आएंगे। तो अगर देवताओं में और श्री कृष्ण में अंतर न होता तो भगवान ने ऐसे भेद क्यों किया होता, ऐसे क्यों बताया हुआ होता उन्होंने कि देवताओं की उपासना करने से एक गति होगी और श्री कृष्ण की उपासना करने से दूसरी गति होगी। कई बार लोग इस श्लोक का आधार देते हैं ये बताने के लिए कि श्री कृष्ण देवता में कोई अंतर नहीं है। आपने सुना होगा वो श्लोक, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवात प्रतिगच्छति। तो कई बार लोगों के मन में ये गलत धारणा रहती है कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि केशव और देवताओं में अंतर नहीं है, अगर हमने देवताओं की पूजा की तो वो कृष्ण की पूजा के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इस श्लोक को हम गौर से थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस श्लोक में जो बताया गया है वो बिल्कुल उल्टा है। इस श्लोक का अर्थ क्या है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागर, जैसे कि आकाश से पानी गिरता है मतलब वर्षा के रूप में, और वर्षा का पानी पहाड़ों पर गिरता है, पहाड़ों से फिर वो नदी बनकर नीचे आते हैं और नीचे आके फिर वो सागर की ओर जाते हैं नदी के रूप में। तो कितने सारे नदियां हैं, लाखों लाखों नदियां हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, और ये सारे नदियां सागर की ओर जाती हैं। तो यहां पर सागर और नदियों के बीच में भेद किया हुआ है, एक ओर नदियां हैं दूसरे ओर सागर है। तो ठीक उसी तरह से बताया जाता है सर्वदेव नमस्कार केशवात प्रतिगच्छति, कि जब हम सारे देवताओं की पूजा करते हैं उनके सामने नमस्कार करते हैं तो ये केशव या श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है हमारा नमस्कार हमारी सेवा। इसका मतलब है कि केशव में और देवताओं में उस तरह से अंतर है जैसे सागर में और नदियों में है। तो केशव अर्थात श्री कृष्ण वही देवताओं के उद्गम हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, सारे महर्षियों का देवताओं का उद्गम मैं हूं। यहां तक कि ब्रह्मा जी शिव जी ये सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। एक बार ऐसे हुआ जब श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं वहां पर किए, और सृष्टि के इंजीनियर ब्रह्मा जी उन्होंने सोचा कि चलो भगवान अब यहां पर आए हैं, हमारे ब्रह्मांड के अंदर इस पृथ्वी लोक के ऊपर वो लीला कर रहे हैं तो चलो जाके उनका दर्शन किया जाए। तो ब्रह्मा जी वहां श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में आए, और जब वो द्वारका में कृष्ण के महल के पास आए तो वहां पे चौकीदार खड़े थे, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी को बुरा लगा, अरे मैं सृष्टि करता हूं मुझे नहीं पहचानते। जैसे समझ लीजिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री हमारे घर में आए और हमारा चौकीदार उनको रोके और बोले आप कौन हैं, तो ये तो सृष्टि करता है, वो हम चौकीदार पूछ रहे हैं आप कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं श्री कृष्ण को देखना चाहता हूं। तो ठीक है, चौकीदार ने कहा आप जरा बैठो, मैं श्री कृष्ण को बता के आता हूं कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो चौकीदार लौट के वापस आया और कहने लगा कि मैंने श्री कृष्ण को खबर दे दी है कि ब्रह्मा जी आए, और उस समय भगवान कृष्ण ने पूछा कि उनसे जाके ये प्रश्न करो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मतलब कौन सा ब्रह्मा। जैसे समझ लीजिए कि यही प्रधानमंत्री हमारे घर में आए और चौकीदार हमको बताया कि प्रधानमंत्री आपके घर में आए हैं, और हम चौकीदार के बोले जाके पूछो उनको कौन से प्रधानमंत्री आए हैं, ये तो ठीक सवाल नहीं है। आखिर देश के अंदर कितने प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक ही तो प्रधानमंत्री है। तो उसी तरह से ब्रह्मांड के भीतर सृष्टिकर्ता कितने हो सकते हैं, एक ही है, वह है एक ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि ये प्रश्न का मतलब क्या है कि कौन से ब्रह्मा, क्या इसका मतलब है कि मेरे अलावा और भी ब्रह्मा है क्या। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जाके श्री कृष्ण से कहो कि चार मुख वाले, चार स्तर वाले ब्रह्मा आए हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं उनके सार चार सर है। देखिए ब्रह्मा जी को कितनी कठिनाई होती होगी, नहीं? एक सर को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, उनके चार सर हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चार सर वाले ब्रह्मा जी आए हैं, ये श्री कृष्ण को जाके बताओ। तो फिर चौकीदार ने खबर दी कि हाँ ठीक है, आइए, आपको श्री कृष्ण अंदर बुला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को देखा और जैसे ही देखा नमस्कार किया और श्री कृष्ण ने कहा, अरे ब्रह्मा जी आइए आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और उस समय ब्रह्मा जी ने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, इतना अद्भुत था यह दृश्य कि ब्रह्मा जी के चारों सर जो हैं वो चकरा गए। वो क्या था दृश्य? उन्होंने देखा कि उस कमरे में जहां वो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे वहां पर लाखों लाखों ब्रह्मा हैं, और इन सारे ब्रह्माओं के सामने ये ब्रह्मा जो है अपने आप को एक चींटी के समान समझ रहे थे जो कि हाथियों के बीच में है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ब्रह्मा खड़े थे जिनके आठ सर थे, और कहीं एक ब्रह्मा जी थे जिनके 16 सर थे, गर्दन एक ही, और कोई ब्रह्मा थे जिनके 32 सर, और कोई जिनके 1000 सर, और एक थे जिनके 10,000 सर, 1,00,000 सर, 10,00,000 सर, लाखों लाखों वाले सर सर वाले ब्रह्मा जी सब जगह थे, लाखों की संख्या में ब्रह्मा ब्रह्मा भर गए थे सब। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये सब क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि यही एकमात्र ब्रह्मांड है। जैसे समझ लीजिए, अगर एक देश का प्रधानमंत्री सोचे कि पृथ्वी लोक में और कोई देश नहीं है, पृथ्वी लोक पर मैं केवल एक ही प्रधानमंत्री हूं, तो वो सही नहीं है। इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री है लेकिन पृथ्वी में कितने सारे प्रधानमंत्री हैं। तो ब्रह्मा जी को अपने ब्रह्मांड के बाहर किसी भी ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं था, इसलिए जब उन्होंने इन सारे ब्रह्मा जियों को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उन अन्य ब्रह्माओं को संबोधित करके कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी स्वागत है आपका, और सब कुछ आपके ब्रह्मांड में कैसे चल रहा है? सब कुशल मंगल है? सब ठीक ठाक चल रहा है? तो हरे ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है भगवान, केवल आपकी कृपा से सब कुछ मेरे ब्रह्मांड में ठीक चल रहा है। हरे ब्रह्मा ऐसे जवाब दे रहा था एक साथ, और फिर सारे ब्रह्मा जियों ने एक साथ प्रणाम किया श्री कृष्ण को, और उनके किरीट जो है मुकुट वो जमीन पे लगे और बहुत जोर से आवाज आया। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि जब हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो इन सारे ब्रह्माओं को देख रहे थे, पर ये जो अन्य ब्रह्मा आए थे ये किसी दूसरे ब्रह्मा को नहीं देख पाए। उनको लगा कि हम अकेले ब्रह्मा जी यहां पर हैं, जितने भी लाखों लाखों ब्रह्मा जी वहां पर आए थे उन सारे प्रत्येक ब्रह्मा जी को यही लगा कि मैं अकेला ब्रह्मा जी यहां श्री कृष्ण के साथ द्वारका में हूं। ये भगवान कृष्ण की माया शक्ति है। केवल हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी समझ पाए कि इतने सारे लाखों लाखों ब्रह्मा जी और हैं। और फिर ये सारे ब्रह्मा जी वापस चले गए और हमारे ब्रह्मा जी रह गए अकेले श्री कृष्ण के साथ। और उस समय ब्रह्मा जी को समझ में आया कि वास्तव में श्री कृष्ण ये कौन है, और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को सुंदर स्तुतियां अर्पण कर दी। तो इसका मतलब है, देखिए कि हम कितने छोटे हैं। हम जब रात को बाहर जाते हैं आसमान में आकाश में देखते हैं कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे तारे हैं, और ऐसे महान ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं, हमारा स्थान क्या है? कुछ भी नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी आजकल हमें बता रहा है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक लोग भी नहीं समझ पाए हैं कि ये ब्रह्मांड की सीमा कहाँ तक है। उनका तकनीकी ज्ञान जो है वो ढूंढ नहीं पाया है। कि यह ब्रह्मांड कहां तक है, इतना विशाल है यह ब्रह्मांड, कितने लोक हैं, कितने ग्रह हैं, इस एक ब्रह्मांड के भीतर वैज्ञानिक लोग गिन नहीं पाए हैं। और ये एक ब्रह्मांड, इसमें एक ब्रह्मा जी हैं जिनके चार सर हैं, और ये ब्रह्मा जी छोटे से ब्रह्मा जी हैं दूसरे ब्रह्मा जियों की तुलना से। इसका मतलब है कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडे हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, एक शिव जी हैं, हर एक ब्रह्मांड में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, हर एक ब्रह्मांड में गणपति हैं, दुर्गा देवी हैं, वरुण देव हैं, इंद्र देव हैं, यमराज हैं, कोटि 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 ब्रह्मा जी, गणपति, शिव जी, इंद्र हैं, सब जगह। लेकिन कृष्ण एक, उन सब से ये सारे विष्णु भी उत्पन्न होते हैं जो कि आगे चल के इन सारे ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी, ब्रह्मा जी स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं समझ गया हूं कि आदि भगवान, आदि पुरुष वो श्री कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। श्री कृष्ण ही है जो कि परम ईश्वर है। जो देवता गण है जैसे ब्रह्मा जी, गणपति, शिव जी, दुर्गा देवी इत्यादि, ये सब भी ईश्वर हैं, क्योंकि वो भी बहुत कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, वो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। जिस तरह से इस देश को चलाने के लिए कितने सारे मंत्री होते हैं और ये मंत्रियों के अलग अलग विभाग होते हैं, लेकिन राजा तो एक है। राजा मंत्रियों को शक्ति देता है, मंत्रियों को चुनता है, और अगर मंत्री ठीक से काम नहीं करे तो राजा मंत्री को अपने पद से हटा भी सकता है। तो ठीक उसी तरह से ये जितने भी देवी देवता हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के मंत्री हैं। भगवान श्री कृष्ण ही असली राजा हैं, और वो अपने धाम में बैठे हैं। अपने धाम में बैठकर उनके रूप विष्णु यहां सब कुछ चला रहे हैं। उनकी ओर से सारे देवी देवता इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो देवता, देवी देवता गण स्वतंत्र भगवान नहीं है, उनकी शक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से वो भगवान कृष्ण के ऊपर अपनी शक्ति के लिए निर्भर है, जिस तरह से कि मंत्री राजा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, प्रजा का व्यक्ति, अगर किसी मंत्री को सम्मान देता है तो इसका मतलब है कि वो राजा को सम्मान दे रहा है वास्तव में, क्योंकि मंत्री राजा का प्रतिनिधि है। मंत्री आज है, कल पद से निकाला जा सकता है। अगर मंत्री पद में नहीं हो तो कोई उसको सम्मान नहीं देगा। जब मंत्री पद में है तब उसको सब सम्मान देंगे, क्योंकि वो राजा का प्रतिनिधि है। जब वो राजा का प्रतिनिधि नहीं रहेगा तब उसको कोई सम्मान नहीं देगा। तो जो भी मंत्री को मिल रहा है, कोई अगर लोग उनकी उपासना कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये सम्मान वास्तव में राजा के लिए है। ठीक उसी तरह से हम जो सम्मान देवताओं को देते हैं, जो देवी देवताओं के उपासक गणेश जी, शिव जी, दुर्गा देवी, ब्रह्मा जी, इनकी उपासना करते हैं, वास्तव में ये पूजा श्री कृष्ण के लिए है। लेकिन इन उपासकों का ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए वो इन देवताओं को स्वतंत्र भगवान समझते हैं, जबकि वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि अगर प्रजा का कोई व्यक्ति एक मंत्री को ही राजा समझ बैठे तो उसके अंदर गलती होगी। ठीक उसी तरह से कोई व्यक्ति जब देवी देवताओं की उपासना करता है तो मंत्री उसे स्वीकार करता है, देवतागण उसे स्वीकार करते हैं, परंतु देवतागण श्री कृष्ण की ओर से इसको स्वीकार करते हैं।
ये भी ये अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता तो इमाम कौंतेय यजंती अविधि पूर्वकम।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं श्रद्धा से, तो वास्तव में ये पूजा मेरे लिए है, लेकिन अविधि पूर्वकम सही ढंग से नहीं की जा रही है, वो गलत ढंग से कर रहे हैं। सीधे मेरी पूजा करनी चाहिए उनको, लेकिन मेरे प्रतिनिधि देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके अंदर अज्ञान है। समझ लीजिए कि एक वृक्ष है, अगर उस वृक्ष को आपको पानी डालना है तो आप कहां पानी डालेंगे? मूल में, जड़ में। जड़ में पानी डालने से सब जगह पानी फैल जाएगा, सारे शाखाओं में फैल जाएगा, सब जगह पानी चले जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम श्री कृष्ण की उपासना करेंगे तो ये सेवा सारे देवताओं के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण इस सारे सृष्टि के मूल हैं, जड़ हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी देवताओं के प्रति जो पूजा की जाती है वो मेरे लिए है। इसलिए उस श्लोक में सर्वदेव नमस्कार केशवात् प्रतिगच्छति, उसका ये मतलब है कि लोग देवी देवताओं की पूजा भी करेंगे तो वास्तव में सम्मान वो कृष्ण के लिए है, लेकिन उपासक इस बात को नहीं जानते हैं। तो देवतागण पूजा को स्वीकार करते हैं और जिन कामनाओं के साथ ये उपासक उनकी सेवा करते हैं उन कामनाओं को भी पूर्ण, वो भी शक्ति उनके अंदर होती है, देवी देवताओं के अंदर। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं कोई भौतिक इच्छा लेकर जाते हैं, और जितनी ज्यादा कोई देवता उनकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं उतना ज्यादा वो उनकी उपासना और बढ़ाते हैं, उनकी श्रद्धा उसमें बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार का व्यवसाय हो जाता है, व्यवसाय में लेन देन का विचार होता है। देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं कि हे देवी या हे देव, हम आपकी ऐसे ऐसे पूजा करेंगे, ये अर्चना करेंगे, ये भेंट चढ़ाएंगे, और इसके बदले में आप मुझे कुछ देना, आप मुझे धन देना, रूप देना, सुख देना, बीमारियों से मुक्ति देना, जो भी जो चाहिए वो मांगते हैं। तो ये भी एक तरह का व्यवसाय हो गया, परंतु देवताओं के अंदर ही शक्ति है। तो प्रश्न ये आता है कि शक्ति कहां से आई उनको? मंत्री को शक्ति कहां से आई? मंत्री को शक्ति भी राजा ने दी है। जिस तरह से जो सम्मान मंत्री को मिलता है वो सीधे राजा के लिए है, और जो शक्ति का प्रयोग मंत्री करता है वो भी राजा से आता है। ठीक उसी तरह से देवी देवता गण भी अगर कोई वरदान देते हैं अपने उपासकों को तो वो वरदान देने की शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। इस तरह से देवी देवता गण ये भगवान नहीं है, भगवान एक है, देवी देवता अनेक है, लेकिन देवी देवता मनुष्यों की तुलना से इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि अज्ञानवश मनुष्य उनको ही भगवान समझ बैठते हैं, क्योंकि आखिर इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड का व्यवस्थापन संभालना ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकते। तो ये भी कोई भगवान के विशेष करीब निकट के व्यक्ति होंगे कि भगवान ने उनको इस काबिल समझा कि इनको इतना ऊंचा पद दे दें। लेकिन भगवान इतने महान है और उनकी माया शक्ति भी इतनी प्रभावशाली है कि ये बड़े बड़े देवता भी कभी भ्रमित हो जाते हैं, जिनसे शक्ति उनको मिली है उन व्यक्ति को ही वो भूल जाते हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई मंत्री हो और अपने शक्ति का उसको इतना घमंड हो जाता है कि वो राजा को ही भूल जाता है, तो फिर क्या होगा? आखिर राजा उसको दंड देगा, और ऐसे होता है, कई बार हुआ है इतिहास में। जब वृंदावन में थे श्री कृष्ण और उनके पिता नंद महाराज और अन्य जो गोप हैं वो इंद्रदेव की पूजा करना चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने उनको रोका
श्री कृष्ण ने पूछा कि हे पिता, और ये हमारे गायों के लिए चारा हो जाता है, हम तो सब गोपगण हैं, गाय चराना हमारा काम है, इसलिए इंद्रदेव की कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि आखिर हमारा जीवन ठीक से चलना या नहीं चलना, ये किसी देवी देवता के ऊपर निर्भर नहीं है, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं उनका फल हमें मिलना है। अगर हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ेगा, तो चाहे जितने भी बारिश आए हम भूखे ही रहेंगे। और अगर हमने ऐसे कर्म किए हैं जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, तो चाहे अकाल भी पड़ जाए लेकिन हमारा भोजन हमें पेट भर के मिलेगा। इसका मतलब है कि इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि इंद्रदेव भी स्वतः अपने कर्मों के वशीभूत हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। अब देखिए, वृंदावन में श्री कृष्ण हालांकि तो भगवान है, लेकिन वृंदावन में एक छोटे बच्चे की लीला कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, इसलिए अपने माता पिता और उनके मित्रों के सामने कभी भी वो अपने आप को भगवान कह के पेश नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण नंद महाराज को ये नहीं कह सकते थे कि इंद्रदेव की पूजा छोड़कर आप मेरी पूजा करो, क्योंकि वो तो एक साधारण बच्चे की लीला कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यहां पर गोवर्धन है, ये गोवर्धन हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, हमारे गाय यहाँ के स्वादिष्ट घास के ऊपर चरते हैं, यहाँ पर कितने सुंदर झरने हैं, नदियां हैं, कंदमूल है जो हम लोग भी खाते हैं, गर्मी में यहाँ वृक्षों के नीचे बैठकर हम छांव में बैठकर आराम करते हैं, यहाँ कितने सुंदर गुफे हैं जहाँ बैठकर हम लोग और भी लीलाएं कर सकते हैं, तो ये गोवर्धन हमारे लिए पूजनीय है। तो हे पिताजी, आप ये गोवर्धन की पूजा करो। अब श्री कृष्ण की बोली इतनी मीठी थी कि कोई उनके बोली को इनकार नहीं कर सकता था। वैसे गोवर्धन भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, ये उनका एक अवतार है, लेकिन नंद महाराज और अन्य वृंदावन के निवासी इस बात को नहीं जानते थे, बड़े भोले भाले थे सब और श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण की बात को मान ली, गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। उधर जब इंद्रदेव को पता चला कि अरे ये लोग मेरे लिए इतना बड़ा यज्ञ संपन्न करने वाले थे, यज्ञ का फल स्वीकार करने के लिए मैं राह देख रहा था, बड़ा आतुर था, और अब मैं क्या देख रहा हूं कि ऐन वक्त पर ये यज्ञ किसी और के लिए किया जा रहा है, और वो भी इस पर्वत के लिए, और वो भी इस छोटे से बालक के कहने पर। क्योंकि इंद्रदेव भूल गए, सारे देवताओं के राजा हैं, जैसे कभी राजा के नीचे एक प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री होते हैं, तो सारे देवताओं के राजा इंद्र हैं, इंद्र शब्द का अर्थ ही है राजा। तो इंद्र को अपने पद का घमंड हो गया था। कभी कभी संसार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद को प्राप्त करता है, अक्सर उस व्यक्ति के मन में घमंड आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं बहुत महान हूं, इसलिए वो दूसरों के प्रति अपराध करता है, अन्याय करता है। तो इंद्र को इतना ऊंचा पद प्राप्त हो गया था और इतनी भोग की सुविधाएं स्वर्ग लोक में हैं, तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य के वातावरण में इंद्रदेव भूल गए कि उनके आराध्य देव कौन हैं। इंद्रदेव भूल गए कि वो भी भगवान के ऊपर निर्भर हैं। इंद्रदेव भूल गए कि श्री कृष्ण की कृपा से ही उनको ये सब कुछ मिला है, और श्री कृष्ण अगर चाहें तो एक क्षण में सब कुछ उनसे निकाल सकते हैं। इसलिए इंद्र को घमंड आई, घमंड से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और इंद्र ने क्रोधित होकर संवर्तक बादलों को बुलाया, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में वर्षा का विभाग संभालते हैं वो, जैसे कि अग्निदेव अग्नि का विभाग संभालते हैं, सूर्य देव सूर्य का विभाग संभालते हैं, वरुण देव पानी या समुद्र का विभाग संभालते हैं, वायु देव हवा का विभाग संभालते हैं। तो इंद्र देव ने इन सारे बादलों को बुलाया, जिनका प्रयोग सृष्टि के संहार के समय किया जाता है, जबकि भीषण एक बाढ़ आ जाता है सारे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने कहा कि जाओ वृंदावन में जाओ और ऐसी मूसलाधार वर्षा वहां पे करो और इन ब्रजवासियों को अच्छा सबक सिखा के आओ। लेकिन वो कथा तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत आसानी से उठाया जैसे छोटा बच्चा एक गेंद उठाए, एक खिलौना उठाए, वैसे उन्होंने उठाया और अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रात लगातार गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बड़े हसमुख रहकर उनको ज्यादा परेशानी नहीं उठाते समय, और सारे ब्रजवासी इस गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे और इंद्रदेव ने भेजे हुई तूफान और वर्षा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 दिन के बाद इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए। इंद्रदेव ने सोचा कि अरे इतनी वर्षा होने के बाद भी ये लोग सब सुरक्षित हैं। फिर जाके इंद्रदेव को समझ में आया कि ये छोटा बालक जिसकी निंदा वो कर रहे थे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन ये स्वयं उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि हैं। तब इंद्रदेव भयभीत होकर कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे, मैंने क्या बड़ा अपराध किया, धिक्कार हो मेरे स्वर्ग के राजा के पद को, अपने ही राजा अपने ही आराध्य देव को मैं भूल गया। फिर जल्दी जल्दी सुरभि देवी जो कि गाय हैं, गायों की माता हैं, उनको सामने रख के इंद्रदेव श्री कृष्ण की कृपा याचना करने के लिए वृंदावन आए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े गंभीर स्वर में, हालांकि वो छोटे 7 साल के बच्चे थे उस समय, लेकिन थे फिर भी भगवान, गंभीर वचन में कृष्ण ने कहा कि हे इंद्र, अभी कभी तुम्हारे मन में घमंड नहीं आना चाहिए। ये हमेशा याद रखो कि जो भी तुम सेवा कर रहे हो वो सेवा है, तुम भी मेरे सेवक हो, कभी भूलना नहीं। बाहरी दृष्टि से तो ऐसे लग रहा था कि एक छोटा बच्चा देवराज इंद्र से बात कर रहा है, केवल इंद्र को पता था कि क्या बात हो रही है। तो छोटे से बालक श्री कृष्ण ने उस समय अपना भगवत स्वरूप धारण किया और इंद्रदेव को कहा, चेतावनी दी, खबरदार ऐसे और नहीं करना, इस बार मैं क्षमा कर रहा हूं तुमको, लेकिन आज से आइंदा मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करना, तुम भी मेरे भक्त हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो अब चले जाओ। तो इंद्रदेव वापस चले गए क्षमा याचना करके। इसका मतलब है कि बड़े बड़े देवता भी कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी मोहित हो जाते हैं। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए, कैसे इंद्र जी मोहित हो गए, शिव जी भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। एक बार शिव जी ने भगवान विष्णु से, श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपका स्त्री रूप देखना चाहता हूं। तो विष्णु ने कहा हल्के से, ठीक है दिखाऊंगा, लेकिन बाद में शिकायत नहीं करना मुझसे। और फिर भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया और शिव जी इतने मोहित हो गए कि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी के, भगवान श्री कृष्ण के माया शक्ति के सामने शिव जी भी नहीं खड़े हो सकते हैं, बल्कि शिव जी तो महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, धीर पुरुषों में से सर्वश्रेष्ठ है, धीर शिरोमणि है शिव जी, अपने इंद्रियों को संयम में रखने के लिए शिव जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया तब ये धीर पुरुष भी अधीर हो गए। और ऐसे कितने ही लीलाएं हैं जहां शिव जी भी मोहित हो गए श्री कृष्ण के माया के सामने। उसी तरह से समुद्र के देव हैं वरुण देव। जब श्री कृष्ण के पिताजी नंद महाराज एक बार यमुना में स्नान करने गए, रात का समय था, ब्रह्म मुहूर्त के पहले अशुभ घड़ी थी स्नान करने के लिए, तो वरुण देव के प्रतिनिधियों ने नंद महाराज को गिरफ्तार कर दिया और नीचे जाकर पाताल लोक में वरुण देव के राजधानी विभावरी में वहां ले गए। जब अन्य गोपों ने देखा कि नंद महाराज नदी में गए यमुना में और बाहर आए नहीं, तो जल्दी से वे श्री कृष्ण और बलराम के पास गए। श्री कृष्ण को पता चला कि क्या हुआ है। वो सीधे नदी में जाकर पहले वरुण देव के राजधानी विभावरी में गए। वरुण देव बड़े शर्मिंदा हो गए थे। शर्मिंदा होकर श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा कीजिए, हमारे कोई मूर्ख दूत थे, प्रतिनिधि थे, अज्ञानी है, उन्होंने आपके पिताजी को गिरफ्तार किया, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, क्षमा कीजिए। नंद महाराज अपने बेटे को अर्थात श्री कृष्ण को केवल बेटा ही समझते थे। भगवान उनका बेटा है ये नहीं जानते थे, अगर कोई बोले भी विश्वास नहीं करते। लेकिन इस बार उन्होंने ये देखा कि वरुण देव इतने बड़े देवता और इनका ऐश्वर्य इतना है, चकाचौंध रह गए नंद महाराज उनका ऐश्वर्य देखकर। और ये वरुण देव मेरे छोटे बच्चे के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। नंद महाराज का मन भी थोड़ा चकरा गया, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को देखा, वात्सल्य स्नेह के मारे वो स्वीकार नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण उनके बेटे के अलावा और कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे वरुण देव भी भगवान श्री कृष्ण के सामने आके झुके। ऐसे ही समस्या वरुण देव की हुई थी बहुत साल पहले भी, त्रेता युग में। श्री कृष्ण तो आए थे द्वापर युग में। ये युग जो चल रहा है ये कलयुग है, इसके पहले था द्वापर युग, इसके पहले त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान ने श्री रामचंद्र का अवतार लिया था और उस समय जब वो वानर सेना को लेकर लंका जाना चाहते थे, समुद्र के तट पर आए और वहां पर वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सागर उनको कोई रास्ता दे, पानी को हटाए ताकि वानर सेना को लेकर श्री राम लंका की ओर चले जाए। लेकिन वरुण देव का कोई पता नहीं, श्री रामचंद्र उपवास करके समुद्र के तट पर बैठे। एक दिन बीत गया, वरुण देव सामने आए नहीं। दो दिन बीत गए, तीसरा दिन था, तीसरा दिन भी बीतने को आया कि उस समय श्री रामचंद्र ने सोचा कि अब इस देवता को सबक सिखाना चाहिए। तो वरुण देव के ऊपर क्रोधित होकर प्रभु रामचंद्र जी ने अपने तीर धनुष को उठाया और समुद्र की ओर उन्होंने खींच के अपने निशानी लगाई, तीर छोड़ा नहीं केवल निशानी लगाई। उस समय भगवान के लाल लाल क्रोधित आंखों को देखकर सारे वहां के जो पशु प्राणी थे जल के अंदर, जलचर प्राणी, इतने उत्तेजित हो गए, इतने भयभीत हो गए, सब इधर उधर लपकने लगे। समुद्र में प्राय तूफान जैसे होने लगा और फिर समुद्र के जल के भीतर से वरुण देव बाहर आए। हे प्रभु, कृपया ये तीर मत छोड़िएगा, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमने सोचा कि केवल आप एक साधारण मनुष्य हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, मुझे लंका जाना है, तुम अभी पानी तुम्हारी अलग कर दो। तो वरुण देव ने कहा, आपके लिए हम क्या नहीं कर सकते, परंतु हमारी आपके प्रति एक निवेदन है। आप भगवान हैं, फिर भी आप मनुष्य समाज में आए हैं लीला करने के लिए, इसलिए अगर आपके लिए पानी ऐसे अलग हो जाए तो फिर आपका गौरव इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे पानी के ऊपर से एक सेतु बांध दें जिसमें कि पत्थर तैर सकें, तो फिर ये आपके गौरव की वृद्धि करने के लिए बहुत अनुकूल होगा। और जहां तक ये तीर का सवाल है, कृपया ये तीर यहां पर मत छोड़िए। तो श्री रामचंद्र ने कहा, देखो, एक बार मैंने जब तीर छोड़ दिया है, जब पकड़ लिया है, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, यहां नहीं छोड़ो तो कहां छोड़ो। तो फिर वरुण देव ने कहा कि उस प्रांत में जिसको मरुदेश कहते हैं, बहुत सारे असुर और राक्षस रहते हैं, कृपया आपके तीर को घुमाकर उधर की ओर छोड़ दीजिए। तो फिर श्री राम ने ऐसे ही किया। तो वरुण देव को याद आया उस समय जब श्री कृष्ण के पिताजी को उन्होंने गिरफ्तार किया और श्री कृष्ण उनके पास आए। वरुण देव सोचने लगे, कान पकड़ कर, दोबारा मेरे से गलती हो गई, त्रेता युग में मैंने गलती की थी, अब द्वापर में भी मैंने गलती की। दोनों बार भगवान को पहचान नहीं पाया जो कि मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे। तो देखिए जितने भी सारे देवी देवता हैं, एक एक करके जब उनको पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, वो आए हैं मनुष्य रूप में, तो फिर उनके शरण में जाते हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, इनसे हम जान सकते हैं कि अगर हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तो केवल ये एक काल्पनिक चीज नहीं है, इसके लिए शास्त्रों का आधार है। हमें आध्यात्मिक जीवन में, धर्म के मामले में केवल शास्त्रों के आधार पर जाना चाहिए। हमारे मनगढ़ंत ढंग से हमें आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो भगवद गीता सारे शास्त्रों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बताया जाता है कि अगर सारे वेद उपनिषद जो भी हैं, अगर वो गाय हैं, तो भगवद गीता उस गाय का दूध है। मतलब सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों का सार ये इस भगवद गीता में पाया जाएगा। कितने सारे शास्त्र हैं, वेद उपनिषद पुराण, उनको पढ़ते पढ़ते हमारा सारा जीवन बीत जाएगा। किसके पास इतना समय है कि इतने सारे ग्रंथों को पढ़ें? और अगर समय भी हो, हम समझ नहीं पाएंगे। हमारी कलयुग की बुद्धि इस काबिल नहीं है कि हम शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ सकें। लेकिन ये भगवद गीता है, ये सारे शास्त्रों का सार है, तो क्यों ना इस सार को स्वीकार करें। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। ये दूध को गाय से कौन निकाल रहा है, दोहन कौन कर रहा है? गोपाल नंदन, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता बोली हुई है। और गाय का बछड़ा कौन है जो कि इस दूध को पी रहा है? पार्थ वत्स। पार्थ मतलब अर्जुन। अर्जुन इस गीता के दूध को, अमृत को पान कर रहा है। सुधीर भोक्ता, अर्जुन के अलावा और जो भी सुधीर लोग हैं, जो महान संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका भी अधिकार है इस दूध को पीना, भगवत गीता का दूध। दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये दूध कोई साधारण दूध नहीं है, ये अमृत है, भगवत गीता का अमृत, जो कि अर्जुन ने पिया। और भगवान श्री कृष्ण ने ये अमृत केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया, हम सबके लिए दिया। तो इस अमृतमय वाणी में हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण परम सत्य, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः। हे अर्जुन, ये जान लो कि सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का उद्गम मैं ही हूं। और जो बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं, बड़े भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं, तो ये भगवद गीता का सार है। पहली बात कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। दूसरी बात कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, भगवान हैं। तीसरी बात कि श्री कृष्ण के शरण में जाना, उनकी भक्ति करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब हम ऐसा करेंगे तो श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं, बल्कि गारंटी देते हैं भगवद गीता में, कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर हम उनके धाम में लौटकर चले जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए यहां पर जगत में प्रकट हुआ हूं। और यहां 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्मों को त्याग दो। तो ये कैसे हो सकता है? एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना करने आया हूं, और दूसरी जगह कहते हैं कि अर्जुन सारे धर्मों को त्यागो। तो क्या मतलब है भगवान का? बहुत सरल है, भगवान कह रहे हैं अन्य धर्मों को त्यागो, धर्म को त्यागो नहीं कह रहे हैं, झूठे धर्मों को त्यागो, नकली धर्मों को त्यागो। असली धर्म क्या है और बनावटी धर्म क्या है? माम एकम शरणम व्रज, ये असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं शरणम व्रज, शरण में आओ मेरे। लेकिन क्या कृष्ण कह रहे हैं कि हम उनके भी शरण में जाएंगे, दुर्गा देवी के शरण में जाएंगे, गणपति के शरण में जाएंगे, सबके शरण में साथ साथ में जाएंगे? नहीं, वो कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आओ हे अर्जुन, ये सही धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि इस धर्म के अलावा जो भी धर्म है उसको त्याग करो अर्जुन, ये धर्म का सार है। भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, शरण में जाकर हमें क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए। शरण में जाने का मतलब क्या है? जैसे युद्ध में कभी कभी एक सैनिक को उसके शत्रु पकड़ लेते हैं, और पकड़ के ये एक सैनिक जो है दूसरे के शरण में जाता है, शरणागत हो जाता है। तो जैसे उसका शत्रु कहे वैसे उसको करना पड़ता है, यह है शरणागति। तो उसी तरह से जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, यह है शरणागति, यह है धर्म। मनगढ़ंत ढंग नहीं, धर्म नहीं बनाना है, जो भगवान कहते हैं उसको धर्म मान के चलना है। तो यह सच्चा धर्म है, और इसके अलावा जो भी कुछ है वो ऊंचे श्रेणी का धर्म नहीं है, झूठा धर्म है। ऐसे धर्मों को त्यागो हे अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो शरण में जाकर श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए। तो क्या है श्री कृष्ण का आदेश? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे। हे अर्जुन मन मना मेरा स्मरण करो, भव मद भक्त मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु मेरे सामने नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मेरे पास लौट कर आओगे हे अर्जुन, निश्चित रूप से ये जान लेना। तो ये है न केवल भगवत गीता का सार लेकिन सारे धर्मों का सार, बल्कि यही है हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य, यही है इस सारे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य। इस सारे सृष्टि में ये मनुष्य जीवन ही एक अनमोल भेंट है भगवान कृष्ण की, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। पशु योनि में यह संभव नहीं है, पक्षी प्राणी योनि में संभव नहीं है, देवी देवताओं के योनि में भी बहुत मुश्किल है। जैसे हम इंद्र देव के बारे में सुने, इतना ऊंचा पद, इतना ऐश्वर्य, इतना सौंदर्य, इतना भोग, तो स्वाभाविक है कि ऐसे भोग के वातावरण में व्यक्ति भक्ति नहीं कर सके, और नरक लोक में जाएंगे या नीच योनियों में जाएंगे, इतना दुख है वहां पर, ऐसे दुख में भी हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो मनुष्य जीवन एक अनुकूल स्थिति है, जिस अवस्था में हम भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि हमें इस मनुष्य जीवन का पूरा फायदा उठाना चाहिए और श्री कृष्ण के भक्त हमको बनना चाहिए, और ऐसा करने से फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के धाम में वापस लौट के जा पाएंगे। भगवान का धाम बड़ा सुंदर है, वहां कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, जन्म भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इसलिए उस जगत को वैकुंठ कहते हैं। ये कुंठ है, वो वैकुंठ है। यहाँ पे केवल दुख ही दुख है, वहां पे केवल आनंद ही आनंद है। तो जो लोग इस दुख भरे संसार को छोड़कर आनंद के जगत में जाना चाहते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। बड़ा सुलभ है ये मार्ग, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, संन्यास आश्रम को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत का पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, योगासन करके सर पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में आकर पवित्र नाम संकीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, भजन करना, उनकी कथाओं को सुनना, बोलना, पढ़ना, ऐसे उत्सव जैसे कि जन्माष्टमी, इनमें आके भाग लेना बड़े उत्साह से, प्रेम से, श्रद्धा से और अन्य तरीकों से भगवान की सेवा करना, अपने घर में श्री कृष्ण को भोग चढ़ाए बिना कोई भोजन ग्रहण नहीं करना। गीता में भगवान बताते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यंते सर्व के विषय ही भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात कारणात। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे नैवेद्य में भोजन अर्पण करके प्रसाद के रूप में जो उसे स्वीकार करता है, वो बहुत ही जल्दी मुक्त हो जाता है इस भवसागर से और मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति ऐसे ही भोजन खा लेता है बिना भगवान को अर्पण किए हुए, नैवेद्य में रखे हुए, उसे बारंबार यहां जन्म लेना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे घर में भी हमें सबको केवल श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम खाते हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, जो भी खाते हैं, मतलब मांस नहीं दे सकते हम, और वर्जित चीजें नहीं दे सकते। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे बताया जाता है कि जो भी हम खाते हैं हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो हम मटन मछली भी खाते हैं तो वो हम क्यों अर्पण नहीं कर सकते। इसके लिए छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि सरकार हमको अनुमति देती है कि ठीक है, तुम जो काम करना चाहो वो करो, कोई अध्यापक बनना चाहे अध्यापक बन जाओ, कोई व्यापार करना चाहे व्यापार करो, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता है खिलाड़ी बन जाओ। तो सरकार ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे ठीक है, सरकार ने हमको व्यवस्था स्वतंत्रता दी है, तो हम डाकू बन जाएंगे, हम चोर बन जाएंगे, तो नहीं। तो फिर वो कहेगा, अरे आपने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दी है हमको तरह तरह के व्यवसाय करने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन उस स्वतंत्रता में भी कोई सीमा है, कोई ऐसे व्यवसाय हैं जो वर्जित हैं, जो नहीं कर सकते आप, और ऐसे व्यवसाय हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमें ये बताया जाता है कि जो भी हम खाते हैं वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि केवल जो चीजें भगवान स्वीकार करते हैं केवल उनको हमें भोग में अर्पण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल में स्वीकार करता हूं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं मांसाहारी भोजन मुझे चाहिए, मुझे अर्पण करो, ऐसा नहीं कहते भगवान। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके घर में उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करके यहां मंदिर में सत्संग में भाग लेके हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो देखिए इतना सुलभ मार्ग है ये, कोई कठिनाई नहीं। आराम से व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को सुखी बना सकता है। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाना इतना आसान बना दिया भगवान ने। उन्होंने कहा केवल मेरे नाम उच्चारण करो, बस नाम का उच्चारण करने के लिए कौन सी कठिनाई है? हम बेलगाम में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने दिया हुआ इस बहुत सुलभ मौके का फायदा हमको उठाना चाहिए। भगवान का नाम लेना, उनके भक्तों का संग करना, कृष्ण प्रसाद का सेवन करना, उनके सुंदर मूर्ति का दर्शन करना और अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम में लौट जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ इस मंदिर में आते रहिएगा। यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, सत्संग होते हैं, भजन कीर्तन दर्शन प्रवचन, और इनका लाभ लेकर अपने मनुष्य जीवन को आप अवश्य सफल बनाइए। हम लोग वास्तव में जन्माष्टमी कल मनाने वाले हैं, परंतु आज क्योंकि बहुत लोग आज भी मना रहे हैं इसलिए यहां पर हमने अनुष्ठान किया हुआ है, लेकिन बड़ा अनुष्ठान जो होगा वो कल होगा। तो कल अवश्य आइएगा, और कृष्ण जन्म कल रात को 12 बजे है, तो उस कार्यक्रम के होने तक रात को प्रसाद लेकर ही आप अपने घर में जाइएगा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर। और याद रखिए, कल जन्माष्टमी होने के नाते थोड़ी बहुत तपस्या हम कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, केवल एक दिन आप भोजन मत लीजिए। 364 दिन हम लेते हैं, अब एक दिन भगवान के खुशी के लिए हमें थोड़ा त्याग करना चाहिए। हो सके तो जल भी मत लीजिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है। हमको अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो उनको खुश करने के लिए थोड़ी तो तपस्या करनी चाहिए। इसलिए कल जन्माष्टमी के दिन अगर हमने ये तपस्या की कि जितना हो सके हमने उपवास खींच के रखा, रात को 12 बजे तक रख पाए तो उत्तम, अगर नहीं हो सके कम से कम दोपहर के 12 बजे तक तो रखिएगा निर्जल उपवास, और उसके बाद अगर आप लेना ही चाहें तो केवल जल पे काम चलाइए रात के 12 बजे तक, और केवल जल से अगर नहीं होगा 12 बजे के बाद तो थोड़े फल खाइए, लेकिन जल और फल के अलावा कृपया और कुछ मत खाइए, केवल कल के एक दिन। और मन ही मन में ये कहिए कि ये तपस्या हम श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर इसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो कल के कार्यक्रम में अवश्य भाग लीजिएगा, और परसों अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनका जन्म दिवस है, तो इसको भी हम सुबह 11 बजे से मनाएंगे, इसमें भी आकर आप अवश्य भाग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप इतना मूल्यवान समय आप सब निकाल के आए हैं इस सत्संग में भाग लेने के लिए, कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के अनुष्ठान में आने भाग लेने के लिए। आशा करते हैं आप ऐसे ही बार बार यहाँ पर आएंगे। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।